نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولياءه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. انسانی معاشرے اور انسانی کلچر کے لیے اللہ تعالی نے دو صنفوں کو پیدا کیا، دو کیسی گیری کو پیدا کیا، ایک کا نام ہے مرد اور دوسرے کا نام ہے عورت. انہی کے ملے جلے علاقے کو انسانی معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے. صرف مرد ہی اس کلچر کا حصہ اور پارٹ نہیں ہے، عورتیں بھی ایک اہم پارٹ ہیں، ایک اہم حصہ ہے. جیسے کہ آپ کی ٹو ویلر کے لیے ایک ہی چکا، ایک ہی ویل نہیں ہوتا، کتنے ویل ہوتے ہیں؟ ایک کو اگر پنچر کر دیں تو بائک ہے، منزل پر نہیں پہنچ سکے. اگر منزل پر پہنچنا ہے تو بھیا دونوں کی ہوا ٹائٹ رہنی چاہیے. ایک کو بھی پنچر کر دیا تو منزل پر نہیں پہنچ سکے. اسی طرح یہ مرد عورت ہمارے کلچر اور ہمارے معاشرے کی یہ بائک ہے، ٹو ویلر ہے. یہ اور بات ہے، ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، درجے میں کچھ تو فرق ہوگا. عورت جو ہے یہ پیچھے کا چکا ہے اور مرد آگے کا چکا ہے، لیکن ہے دونوں بائک کو منزل پر پہنچانے کے لیے دونوں امپارٹنٹ ہیں. مرد اچھا رہے اور عورت کو خراب ہونے کا چانس دے دیا جائے، خدا کی قسم تمہارا انسانی معاشرہ حیوانیت کے گڈھے میں تو گرے گا، انسانیت کی منزل پر نہیں پہنچ سکے. اس لیے دونوں پہیوں کو برابر کیئر فلی، اس کی حفاظت ہر بائک والے کی ذمہ داری ہے. اے لوگوں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دیتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی تعلیم ایک حیثیت سے زیادہ مفید ہے. وہ حیثیت کیا ہے؟ عورت کی فطرت. عورت کی فطرت یہ ہے کہ اس کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی. جتنا عورت بات کرتی ہے مرد نہیں کرتا. آپ تجربہ کر دیجیے، ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آج ہم یہ اور دونوں آئے، لیکن آپ پوچھیں کہ ٹرین میں ہم نے کتنی آپس میں بات کی. اگر دو عورت ہوتی جس کی کوئی آشنائی اور کوئی تعلق نہیں، آ کے بیٹھتی ہے اور دوسری تھوڑی دیر کے بعد آ کے بیٹھتی ہے، دو منٹ نہیں گزرتا ہے، بہن کہاں سے آ رہی؟ کتنے بچے تمہاری سسرال والے، تمہارا شوہر کیا کرتا؟ پورا اس کے سسرال اور میکے کا بھائی لوٹا نکال لیتی، ساری اس کی پوتی پترا نکال کر کے، اور دونوں ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ اس کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں، کبھی چپ نہیں رہتی عورت. اگر تنہا بھی ہے تو میں نے، میرا یہ تجربہ ہے کہ ٹرین میں تنہا بھی بیٹھی ہے تو تھوڑی دیر سر کھجانے کے بعد بولتی، معلوم ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس کو بول کے آئی تھی، گئی تھی نہیں وہاں پر، اور یہ کام ہوا تھا اکیلے میں. اس لیے میں کہتا ہوں اس کو بدلنے میں بند کر دو تو ٹوٹی سے یہ بات کرتی ہے. عورت کبھی چپ نہیں رہتی. ایک پاکستان میں ایک مقابلہ ہوا تھا جھوٹوں کا، سمجھے، میں تقریر نہیں کر رہی، اور جھوٹوں کا مقابلہ یہ ہوا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو نوبل پرائز ملے گا. جھوٹ کا مقابلہ، ایک سے ایک گپی اور جھوٹے لفنگے وہاں جمع ہوئے، سب اپنا اپنا جھوٹ بولتے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا لمبا بانس تھا کہ جب बदली इधर उधर होती थी, बारिश नहीं होती तो मेरे दादा बदलियों को कहां से ऐसे ऐसे जमा करते और एक साहब बोले मेरे दादा ने भैंस पाला था और जब उस दूध को आग पर तपाया जाता था तो इतनी मोटी मलाई निकलती थी कि उस पर बैलगाड़ी भी चली जाए तो दबती नहीं थी। कितना अच्छा झूठ है, हालांकि झूठ अच्छा नहीं होता लेकिन वेद स्वरूप उसकी कोई सीमा ही नहीं। सारा एक से एक सपने अपने गप और झूठ को देखा, जो जैसा उसको लिखता जा रहा था। एक कॉलेज का स्टूडेंट आया, वो भी डाइस पर खड़ा हुआ झूठ बोलने के लिए। कहा मैं जा रहा था एक जगह, एक कुआं था और वहां एक दरख्त था जिसके नीचे तीन औरतें बैठी थी और तीनों खामोश थी। सबसे बड़ा प्राइज उसी को मिला, तीन औरत और चुप है, इससे बड़ा दुनिया में झूठ हो ही नहीं। समझे गुरु, ये है औरत मैं तुम्हारी बुराई नहीं बयान कर रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। औरत की जबान कभी नहीं रुकती और चलती है तो टेलर की कैंची से ज्यादा तेज चलती। दिल कतर दे, किसी की बात कतर दे, क्या क्या कर लेती है ये औरत। अब औरत की फितरत पर हम रिफ्लेक्शन नहीं डाल सकते, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि फितरत को बदला नहीं जाता। हदीस पाक में आए गए लोगों, अगर कोई ये कहे कि ये पहाड़ अपनी जगह से उधर चला गया तो मान लेना, और अगर कोई कहे कि इंसान ने अपनी फितरत छोड़ दी तो मत मानना। मुमकिन है कि चल जाए जबल अपनी मकर से, तब्दील किसी हाल में फितरत नहीं होती। फितरत को बदला नहीं जाता है, फितरत को संवारा जाता है, फितरत की राह को तब्दील किया जाता है, फितरत को खत्म नहीं किया जाता। बच्चे की फितरत है मां की छाती से दूध पीना, लेकिन इस फितरत को कभी बच्चा गलत चीज को मां की छाती समझकर मुंह में चूसता है, लकड़ी देता है, अंगूठा चूसता है, कपड़ा चूसता है। नादान बच्चा है, मां उसको तमाचा न मारे, इसकी फितरत को बदल नहीं सकती। कपड़े को हल्दों से हटा ले, छाती उसके मुंह में दे ले। फितरत को सही समझ देना चाहिए तो उस फितरत का फायदा है। बच्चे के मुंह में लकड़ी चूस रहा है मां की छाती समझ करके, निकाल दे अपनी छाती उसके मुंह में दे दे। फितरत को सही डायरेक्शन मिल गया, बच्चे का पेट भर जाए। तमाचा मारने से फितरत खत्म नहीं हो सकती, बच्चा दुखी बन जाएगा। इसी तरह हम औरत की फितरत को बदल नहीं सकते, अब एक ही रास्ता है उसकी समझ को बदलने। समझे, अब औरत को आलिमा बना दो, सालिमा होगी तो शादी ब्याह में तो उधम चौकड़ी करती ही है, ये कहीं मैयत हो जाती वहां भी औरत जाएगी तो जा करके थोड़ी देर मुर्दे के पास बैठ करके क्या हो गया करके घर वालों को बता देगी कि मैं तेरे रंग में शरीर, थोड़ी दूर जा करके तेरा एम कितने का, ये पंजाबी सूत्र कहां से करे, ये शुरू हो जाता घुसुर 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 वहां होता मैयत उधर पड़ी है और इसकी रामायण यहां शुरू हो जाती। मेरे दोस्त को ये औरत की फितरत है, अगर औरत को आलिमा बना दो तो खुदा की कसम शादी की महफिल में आएगी तो कुरान की आयत पढ़ेगी, हदीस मुस्तफा सुनाएगी, वहां के खुराफात को देख करके उसका दिल जलेगा, कुछ न कुछ मसले बनाएगी, बताएगी, बतावा रसिया सुनाएगी, बाहर शरीयत से आएगी, इस्लामी जिंदगी मुफ्ती हमें अहमद यार खान की सुनाएगी, उसके जुबान को तो चलना है। अगर इसको आलमा बना दोगे तो इसी जुबान से इल्म के जवाहिर बाहर बिखरेगी, और अगर इसको छोड़ दोगे तो इससे गालियां गीबत और दुनिया की खुराफात निकलेगी। औरत की फितरत को बदल नहीं सकते, इल्म के जरिए उसके शब्द को बदल सकते। इसलिए औरतों का आलिम बना आलिमा बना देना ये वक्त का अहम तकाज़ा है, और वक्त की एक अजीम जरूरत है। मौलाना यूसुफ साहब ने जरूरत को महसूस किया, अब उन्होंने तो जरूरत को महसूस किया और आपको उस जरूरत में पार्टनर बनना है। मुझे भूख लगी है, मुझे जरूरत है कि मैं खाना खाऊं, मैंने आटा और सब्जी ला दिया, लेकिन मुझे पकाने का ढंग नहीं है, तो अब पकाने वाले की जिम्मेदारी है कि इसकी भूख को मिटाना है तो पका दे, वो भी खा लेगा और ये भी खा लेगा। जिसको जो काम अल्लाह ने दिया है वो उसका पार्टनर बन जाए, दुनिया जरूरत ही का नाम है। एक की जरूरत दूसरे से, दूसरे की जरूरत तीसरे से पूरी होती है, सब एक दूसरे के मोहताज हैं। मेरे दोस्त को याद रखो, यूसुफ रजा ने अगर जरूरत महसूस की है और आपने इस महसूस की हुई जरूरत में पार्टनर बन गए कि तुमने ये जरूरतें पूरी करके इल्म सिखाना तुम्हारा काम है, लेकिन मदरसा बनाना ये उस बेचारे का काम नहीं है, इसका आपका हिस्सा, आपको उसमें हिस्सा देना है। पैसा उसके पास होता तो वो भी जरूरत पैदा कर दे पूरी करता, अगर आटा और सब्जी है पकाना आता तो मैं भी पका लेता, लेकिन मुझे पकाना नहीं आता है, पका के दे दो मेरे बाप, तू भी खा देगा मैं भी खा लूंगा। इसे मदरसा कायम करना आता है, लेकिन बिल्डिंग बनाना इसके बस की बात नहीं है, उसमें हिस्सा कौन लेगा? आप लेंगे, मालदार लेगा, ताकि कौम की बच्चियों की भी भूख और तुम्हारे बच्चों की भी भूख और प्यास खत्म हो जाए। इसमें अकड़ गुरूर और हम इसका साथ नहीं देंगे उसका साथ नहीं देंगे ये थिंकिंग खत्म कर दो। एक है नेगेटिव थिंकिंग और एक है पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच और मनफी सोच। इंसान में दो ही सोच है, नेगेटिव थिंकिंग होती है या पॉजिटिव। मेडिकल साइंस का सर्वे है कि जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग मुस्बत सोच है वो बहुत सी बीमारियों से महफूज होता है। मेडिकल साइंस की नई रिसर्च ये आई है कि जिसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग मनफी सोच, अभी शायद आप मनफी न समझ सके हो, एक आदमी है जब वो किसी को देखता है तो उसकी खूबियां तलाश करता है, इसके अंदर ये अच्छाई लग रही है, एक अच्छाई लग रही है, और एक वो आदमी है जो किसी को भी देखता है उसमें बुराई देखता है। ये तो ऐसा है वैसा, मिसाल के तौर पर एक काला आदमी आ गया, अरे कैसा बदसूरत है, ये तो नेगरो मालूम होता है, अफ्रीका के जंगल से आके आदमी है। हालांकि उसके अंदर और भी बहुत सी खूबी है, उस खूबी को नहीं देखता है, खाली उसकी उसके ऐप को निकालता है। जो ऐप ढूंढने वाला है ये नेगेटिव थिंकिंग है, और जो उस ऐप वाली चीज में अच्छाई ढूंढ के निकालता है ये पॉजिटिव थिंकिंग। अब समझ गए, जो नेगेटिव थिंकिंग का हामिल है हर आदमी में लक्ष्य तलाश करता है। मेडिकल साइंस ने कहा उसको चार बड़ी बीमारियां होती हैं, कौन सी बता दो? एक है कैंसर, बीपी, शुगर। नेगेटिव थिंकिंग वाले में चार बीमारियां पैदा होती हैं, कोई ना कोई बीमारी का वो शिकार होगा एक दिन। शुगर इसलिए कि नेगेटिव थिंकिंग मनफी थिंकिंग से आदमी में एक गर्व और बेचैनी पैदा, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसके पास पैसा ऐसा क्यों आ गया, हसद जलन ये सब उसके अंदर पैदा होगा। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा आदमी को हासिल और उसे एंगर बनाता है, एंग्री, एंग्री जानते हैं इसको कहते हैं। अरे गुस्से को अंग्रेजी नहीं पढ़े बोलो, मैं तो मेरा मुद्दा हूं, आप एंग्री बन जाते हैं, एंग्री, और आपके अंदर नेगेटिव वाला थिंकिंग है तो गुस्सा आएगा, हसद आएगा। अगर इल्म वाला है, पैसे वाला है, तो आप उसके पैसे से जलन आपके दिल में पैदा हो। इसका पैसा कैसे खत्म हो, दुनिया भर में उसका आयत निकालोगे, अरे देखो ये पैसा इसका, इसके बाप की बराबरी थोड़ी ना, यहाँ से बना ले आया था, वहां से उसने बेईमानी की, उसकी उसने दगा की, दुनिया भर की बातें उसने शुरू कर दी, जलन पैदा होती है और हसद दुनिया की सबसे बुरी चीज। एक पेपर आपके पास रखू मैं और उसमें आपने लिखने के लिए उस पर किसी डार्क पेन से उसने एक नुक्ता सफेद पेपर पर लगा दिया, तो नेगेटिव थिंकिंग वाला क्या करेगा, उसको इतना बड़ा सफेद नजर नहीं आएगा, वही एक काला नुक्ता नजर आएगा। अरे यार इस पर नुक्ता है, मुझे तो अच्छा चाहिए था, ऐसे मोड़ेगा फेंकते का साफ लेकर आओ। नेगेटिव थिंकिंग वाले को काला नजर आया और पॉजिटिव थिंकिंग वाला, अरे बोले इतना ही तो है, चलो लिखो। अब उसने लिखना शुरू किया, उस नुक्ते को नून के ऊपर लगा दिया, बे के नीचे लगा दिया, यह पॉजिटिव थिंकिंग। अब समझ गए, नुक्ते को देखकर आए देख करके फेंक दिया, ये नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच। और उस नुक्ते को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये पॉजिटिव। उसने कागज को मड़ोड़ करके नाली में नहीं फेंका, वैसे नहीं किया, उसने उसको ऐसा संवार दिया, तो जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है उसके सामने अगर कोई आता है, ऐप नजर भी आता है, तो सोचता है इसके ऐप को हुनर में कैसे बदलू। बेटा अगर है उसके अंदर ऐप है, तो बाप हर वक्त ऐसा कर वैसा कर, तो बेटा बाकी हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग। उसके ऐप को उसने शुमार नहीं किया, इस फिक्र में लग गया कि इसके ऐप को हुनर से बदल दूं, तो वो बेटा वफादार बन जाता है। इसी तरह औरत है, औरत के साथ अगर शौहर नेगेटिव थिंकिंग के साथ आता है, तो हर काम में उसको ऐप नजर आएगा, वो एक बिफरी हुई शेरनी की तरह उस पर हमला एक दिन करेगी और तलाक की नौबत आ जाएगी। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, उसने गलत भी कर दिया, तुझे मुस्कुरा कर कहा कम हेयर माई डार्लिंग, समझे, अब वो जलाल में नहीं जाएगी, झुक जाएगी, अरे मेरी गलती हो गई, मैं तो समझा था कि जूते मारेंगे, ये तो माई डार्लिंग बोल रहे हैं। उसके सारे उसका उसका डर और उसके सहन की जो झंझराहट थी, एक माई डार्लिंग ने बदल दिया, ये है पॉजिटिव थिंकिंग। अभी समझे कि नहीं, इसी तरह औरत को संभालना है तो सब पूरी कौम की पॉजिटिव थिंकिंग यह है उसे आलिमा बना दो, और नेगेटिव थिंकिंग है कि इसे एक्टर्स बना दो, और अगर कोई खिलाफ सलाह गाना गाती है तो गाना बना दो, डांस वाले के यहां भेज दो, डांस करे, बाबा मेरी बेटी क्या डांस करती है, ये सब नेगेटिव थिंकिंग। इसको सालिमा तो थी और उसको भूतनी बना दिया, चुड़ैल बना दिया। आज हमारे माशरे में देखो बच्चियों को कैसा लिबास पहनाया जाता है, नाचने वालियां जो घगरा पहनती हैं, आज बचपन से बच्चियों को ऐसा लिबास पैरों की नकल करने में पहना दिया जाता है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। अरे वो लिबास पहनाओ कि तुम्हारे बच्चियों के सदर ढकी हुई हो, आज एक डोरी यहाँ से हाथ तक रहती है, नीचे खतरा रहता है, सीना खुला रहता है, पीठ खुली रहती है, तुम बोलते छोटी बच्ची है, जैसी आदत डालोगे वैसे ही उसकी सोच बनेगी। आज अपनी बच्चियों में लिबास का एहतमाम करो, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो, अच्छा अच्छी सोच पैदा करो, दोनों का रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। मैं मेडिकल साइंस नहीं बोल रहा हूँ, अब आप सुनो। कुरान फरमाता है समझ अमल में सफल सदन खैर अमल में सफल सदन शर। ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का फलसफा और नाजिक कुरान बयान फरमाना है। अमल निष्पारा जरूर खैर, जिसने खैर बराबर भी, जिसने जर्रा बराबर भी खैर का काम किया, उसका खुशगवार रिजल्ट अपनी आंखों से देखा। थिंकिंग छोटी हो या बड़ी, पॉजिटिव हो, अच्छा रिजल्ट सामने आए। कुरान का लॉजिक है, साइंस वाले क्या समझेंगे। कुरान नेगेटिव थिंकिंग के बारे में फरमाता है व मैया अमल मिसाल जर्रतिन शर्र, और अगर जर्रा बराबर भी शर और लफंदा पर किया तो इसका भी भयंकर रिजल्ट उसके सामने आए। बच्चों के साथ अगर गलत अंदाज अख्तियार किया, जवानी में वही रंग लेकर के उभरेंगे। और की बच्चियों की तालीम और तरबियत है मुसलमान अच्छी कर, वो अगर बीए एमए पीएचडी नहीं हुई ना हो जाए, लेकिन कुरान पढ़ कर के और आलमा बन जाए, तो तेरे घर में पीएचडी की बरकत नहीं बल्कि फरिश्तों की ज्यारत तेरे घर की करेगा। रहमत ही रहमत आएगी। आज हम अपनी बच्चियों को सर्विस करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। मेरी बच्ची बड़ो ऑफिसर बन गई, आरएसएस का ये आज एजेंडा है कि मुस्लिम बच्चियों को सबसे ज्यादा सर्विस, कंपनियों में उनका ये ऐलान, और बच्चियां जाती है सर्विस के नाम पर शर्माया और गैरों के एजेंडे को तकदीर कर रहे हैं। हमारी बच्चियों के साथ क्या होता है माँ बाप को नहीं मालूम, मुझे मुश्किल है। नेगेटिव थिंकिंग है। इस्लाम की तालीम को छोड़वाया, ऑफिसों में लाकर के बिठाया, अल्लाह महफूज रखे हमारी फातिमा जहरा की कलीजों की है बुलाने पर। आज हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हम कान में तेल और आंख पर पट्टी बांध करके बैठे और रोना रोते हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है, हम बर्बाद कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमारे पास है, पॉजिटिव थिंकिंग लेके उठो, जर्रा जर्रा नेकियों को अपने आपके सीने से लगाओ और बुराइयों को ठोकर मारो। इंशाअल्लाह यही मुआशरा वो होगा जिसमें अली मुर्तजा की घरेलू जिंदगी की शान चमकेगी, फातिमा जहरा की इज्जत और हया का जेवर हमारी औरतों के पास नजर आए। ये है जिंदगी, ये है थिंकिंग। अपनी सोच बदलो, अपने अंदाजे जिंदगी और फिक्र को बदलो। इस मदरसे को मत समझो कि ये फुकरा और मसाकीन का घर है, अरे ये पॉजिटिव थिंकिंग का मदरसा है। मुस्बत सोच यहाँ पर होती है, अल्लाह और रसूल की किताब जहाँ पढ़ाई जाएगी वहाँ नेगेटिव थिंकिंग हो ही नहीं सकती, वहाँ सब पॉजिटिव थिंकिंग हो। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को इस्लाम के साचे में ढाल कर इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाकर इस्लाम का काम करने की तौफीक रफी करवा दिया। और जितना आदमी पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएगा, फॉलो करेगा, उसके अंदर तवाज़ो इंकिसारी आ जाएगा, वो मगरूर नहीं होगा, वो नमरूद और फिरौन की तरह अकड़ कर नहीं चलेगा, उसकी उसका स्टेटस हाई नहीं हाई से हाईएस्ट बनता चला जाएगा। हजरत मुजद्दिद अल-सिस्तानी फरमाते हैं दफ्तरे सानी में कि जो जितना बुलंद होता जाएगा उसमें तवाज़ो और इंकिसारी उतनी ज्यादा आती चली जाएगी। बुलंदी पर जाने के बाद आदमी में खौफ पैदा होता, एक मिसाल के तौर पर आप एक ऊंचे झाड़ पर पहुंच गए, वहां झाड़ पे जाकर के नाचेंगे कूदेंगे क्या करेंगे, सब लेंगे कहीं गिर न जाऊं, ये खौफ पैदा है। वहां जरा सा इधर उधर किसी दुबली पतली शाख पर पैर नहीं रखेंगे, डर के मारे कहीं टूट न जाए और मैं नीचे नहीं आ जाऊं। जितना ऊपर जाता जाएगा उसमें تواضع کے ساری اور سنبھلنے کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا نیچے رہے گا زمین پر ہے, کود رہا ہے, دوڑ رہا ہے, اور بھاگ رہا ہے, اکڑ رہا ہے, لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, کوئی درخت پہ جا کے لڑتا جھگڑتا کیوں نہیں, اوپر ہے اس لیے تواضع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, خشیت کا انداز پیدا ہوتا ہے, اور تواضع اور انکساری رب کو بہت پسند ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول, یہ سنو, ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے حاتف غیبی نے آواز دی, اے بایزید اچھی سے اچھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, بہتر سے بہتر عبادت, اور وہ تحفہ میری بارگاہ میں لاؤ جو میرے پاس. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ میرے پاس کیا نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, آواز آئی بایزید میرے پاس عاجزی اور انکساری نہیں, میں عاجزی اور انکساری سے پاک, یہ عاجزی انکساری اپنی زندگی کا اور نہ بچھونا بنا لو, یہ میری بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے. میرے پاس عاجزی اور انکساری نہیں ہے, جو بندہ یہ تحفہ میری بارگاہ میں بیچ رکھتا ہے میں مجھے سے بلندی عطا کروں. سمجھے, عاجزی انکساری کس کا ہے؟ یہ ہماری وہ عبادت ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. اور آج اگر دولت آ گئی تو غرور آ جاتا ہے, طاقت آ گئی غرور آ جاتا ہے, سر مل گئی مال مل میں پہنچا تو غرور آ جاتا ہے, دنیا کا تمام علم غلم مان لے کر کے مغرور بنتا ہے, اور ان میں دین لے کر کے تواضع اور ان کے ساری کا مجسمہ بنتا ہے. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ ہے. اللہ کو تواضع اور انکساری بہت پسند ہے. پروردگار عالم ہم سب کو متواضع بنائے, منکسر المزاج بنائے. پروردگار عالم ہمارے معاشرے کو اسلام کے جلووں سے منور فرما دے. وما علینا الا البلاغ. ارے ہو کر صلاۃ و سلام. تین کتابوں میں اعلان کیا ہے, لے جانا بھول دیے گا نہیں, اس سے آپ کو ملے.